मेरे चैप्टर जैन दर्शन के तीसरे टॉपिक तत्व विचार का यह चौथा टॉपिक है, जड़ या अजीव द्रव्य। जीवों का निवास स्थान यह जगत है, यह जड़ द्रव्यों से बना हुआ है। कुछ जड़ द्रव्यों के द्वारा तो जीव शरीर धारण करते हैं और कुछ बाह्य परिस्थिति का निर्माण करते हैं। जड़ द्रव्यों के अतिरिक्त और भी अन्यान्य द्रव्य हैं जिनके बिना उन द्रव्यों का संगठन नहीं हो सकता। वे हैं आकाश, काल, धर्म और अधर्म। इनका एक एक विचार करना कठिन होगा। पहला, जड़ तत्व या पुद्गल। जैन लोग जड़ तत्व को पुद्गल कहते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके। जड़ द्रव्यों का संयोग भी हो सकता है और विभाग भी, अर्थात उन्हें जोड़कर एक बड़ा आकार दिया जा सकता है या उन्हें तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। पुद्गल के सबसे छोटे भाग को, जिसका और विभाग नहीं हो सकता है, अणु कहते हैं। दो या अधिक अणुओं के संयोग से संघात या स्कंद बनता है। हमारे शरीर और अन्य जड़ द्रव्य अणुओं के संयोग से ही बने संघात हैं। मन, वचन तथा प्राण जड़ तत्वों से ही निर्मित है। पुद्गल के चार गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण। ये गुण अणुओं तथा संघातों में भी पाए जाते हैं। अन्य भारतीय दार्शनिकों का मत है कि शब्द भी एक मौलिक गुण है, परंतु जैन इसे नहीं मानते। वे कहते हैं कि उद्योत अर्थात चंद्र प्रकाश, ताप, छाया, आतप, तम, बंध अर्थात संयोग, भेद, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान अर्थात आकार आदि के समान शब्द भी पुद्गल के आगंतुक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा है आकाश। आकाश के कारण ही सभी अस्थिकाय द्रव्यों को कोई न कोई स्थान प्राप्त है। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म आकाश में ही स्थित है। आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसका अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। द्रव्यों का कायिक विस्तार स्थान के कारण ही हो सकता है। यह स्थान ही आकाश है। यह सत्य है कि जिसका स्वाभाविक गुण विस्तार नहीं है, उसे आकाश विस्तृत नहीं कर सकता। लेकिन जिसका वह स्वाभाविक गुण है, उसके विस्तार के लिए आकाश ही स्थान देता है। आकाश के बिना अस्थिकाय द्रव्यों का विस्तार सर्वथा असंभव है। यह सही है कि अस्थिकाय द्रव्य का स्वाभाविक धर्म ही है विस्तृत होना, लेकिन उसका विस्तृत होना बिना आकाश के संभव ही नहीं है। कहा है कि द्रव्य आकाश को व्याप्त करता है और आकाश द्रव्य के द्वारा व्याप्त होता है। जैन दार्शनिक आकाश के दो भेद मानते हैं, लोकाकाश और आलोकाकाश। लोकाकाश वह है जो जीवों तथा अन्य द्रव्यों का आवास स्थान है। आलोकाकाश उस आकाश को कहते हैं जो लोकाकाश के परे है। तीसरा है काल। उमा स्वामी के अनुसार द्रव्यों की वर्तना, परिणाम, क्रिया, नवीनत्व या प्राचीनत्व काल के कारण ही संभव होता है। काल भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसलिए आकाश की भांति इसका भी अस्तित्व अनुमान से ही सिद्ध होता है। काल न हो तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, नवीनता, प्राचीनता आदि कुछ भी संभव नहीं है। इनका अस्तित्व ही यह सिद्ध करता है कि काल है। हम इनका एक एक कर विचार करें। वर्तना के लिए काल आवश्यक है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षणों में वर्तना रहना ही वर्तना कहलाती है, अर्थात वर्तमान रहना ही वर्तना कहलाती है। परिणाम अर्थात अवस्थाओं का परिवर्तन भी काल के बिना संभव नहीं है। कोई कच्चा आम समय पाकर पक जाता है। आम की दोनों अवस्थाएं एक समय में नहीं हो सकती। बिना काल परिवर्तन के एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण नहीं आ सकते। इसी प्रकार क्रिया या गति तभी संभव होती है जब कोई वस्तु पूर्वापर क्रम में भिन्न भिन्न अवस्थाओं को धारण करती है। यह तभी संभव हो सकता है जब काल का अस्तित्व हो। प्राचीन तथा नवीन, पूर्व तथा पश्चात के भेद भी काल के बिना संभव नहीं हो सकते। इन युक्तियों से हम काल का अनुमान कर सकते हैं। काल अस्थिकाय द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह एक अखंड द्रव्य है। समस्त विश्व में एक ही काल युगपत है। हम देखते हैं कि जिस द्रव्य को काय है, वह अपने काय के विभिन्न अंशों से वर्तमान काल के बिना आकाश के विभिन्न अंशों में वर्तमान रहता है, किंतु वर्तमान काल बिना अवयवों के ही समस्त विश्व में व्याप्त है। जैन दार्शनिक कभी कभी काल के दो भेद करते हैं, पारमार्थिक काल तथा व्यवहारिक काल। व्यवहारिक काल को समय भी कहते हैं। वर्तना पारमार्थिक काल के कारण होती है। अन्यान्य परिवर्तन व्यवहारिक काल के कारण होते हैं। क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि में व्यवहारिक काल या समय ही विभाजित होता है। समय का प्रारंभ और अंत होता है, किंतु पारमार्थिक काल नित्य तथा निराकार है। पारमार्थिक काल को भिन्न भिन्न उपाधियों से सीमित करने से या विभक्त करने से दंड, दिन, मास आदि समय बनता है। गुणरत्न कहते हैं कि कुछ जैन दार्शनिक काल को भिन्न या स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते, बल्कि अन्य द्रव्यों का ही एक पर्याय मानते हैं। चौथा है धर्म और अधर्म। आकाश और काल की भांति धर्म और अधर्म का अस्तित्व भी अनुमान से ही सिद्ध होता है। धर्म और अधर्म के लिए क्रमशः गति और स्थिति प्रमाण है। मछली का पानी में चलना केवल मछली के कारण ही संभव नहीं हो सकता। यह सत्य है कि मछली ही अपनी गति को प्रारंभ करती है, किंतु यदि अनुकूल आधार न हो, अर्थात जल न हो, तो मछली तैर नहीं सकती। इस तरह हम देखते हैं कि गति के लिए एक सहायक वस्तु की आवश्यकता है। इसी प्रकार जीव या अन्य किसी जड़ वस्तु की गति के लिए एक सहायक द्रव्य की आवश्यकता है, जिसके कारण ही गति संभव हो सकती है। जैन इसी को धर्म कहते हैं। यहाँ इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है कि धर्म केवल गतिशील द्रव्यों की गति में ही सहायक हो सकता है। स्थिर द्रव्यों को यह गति नहीं दे सकता। ऊपर के उदाहरण में मछली का तैरना जल के कारण संभव होता है। जल मछली को तैरने के लिए प्रेरित नहीं करता। अधर्म द्रव्यों के स्थिर रहने में सहायक होता है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया पथिक के विश्राम में सहायक होती है या पृथ्वी द्रव्यों की स्थिति में सहायक होती है, उसी प्रकार अधर्म भी विश्राम और स्थिति में सहायक होता है। यह किसी चलती हुई वस्तु को स्वयं रोक नहीं सकता, उसके विश्राम में सहायक भर हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि धर्म और अधर्म में परस्पर विरोध है, किंतु दोनों में कोई सादृश्य भी है। ये गति और स्थिति के उदासीन कारण हैं, ये स्वयं क्रियाशील नहीं है। यहाँ धर्म और अधर्म का प्रयोग नैतिक या धार्मिक अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि एक विशेष पारस्परिक अर्थ में हुआ है। आकाश, काल, धर्म और अधर्म एक विशेष अर्थ में कारण माने जाते हैं। साधारणतः कारण के तीन मुख्य भेद हैं, कर्ता, करण या साधन और उपादान। कुंभकार कुंभ का कर्ता है, उसका चक्र करण है तथा मिट्टी उपादान है। आकाश, काल, धर्म और अधर्म साधनों के ही अंदर आ सकते हैं, किंतु साधारण साधनों से कुछ भिन्न हैं। साधारण साधनों की तरह ये प्रत्यक्ष ढंग से सहायक नहीं होते हैं और न ये उनकी तरह क्रियाशील ही रहते हैं। अतः गुणरत्न इन्हें अपेक्षा कारण कहते हैं। जिस प्रकार कुंभ के लिए चाक की कील प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होती, उसी प्रकार आकाश, काल, धर्म और अधर्म भी प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होते हैं।